शिवं शुद्धोत्तम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेक्षा न कायम न संगम न स्वेक्षा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो न मोक्षो न रागादि दोषो न योगम न भोगम न व्याधिर्न शोक न भोगम न व्याधिर्न शोक न कोपम न मानम न माया न लोभम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा न पादौ न घ्राणम न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा न वक्त्रम न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न जन्मम न मृत्यु न मोहम न चिंता न मृत्यु न मोहम न चिंता न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा
न खेदम न वर्णम न मुद्रा
चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम
त्रिखंडे हरे विश्वनाथम
ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादि जालम
ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादि जालम
न पुण्यम न पापम न चाक्षादिगात्रम
न पापम न चाक्षादिगात्रम
चिदानंद रूपम नमो वीतरागम
चिदानंद
रूपम नमो वीतरागम न बालो न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो
न वृद्धो न तुच्छो न मूढ़ो
न स्वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा
न भेदम न मूर्तिर्न स्नेहा
न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा
न शुक्लम न मोहम न तंद्रा
चिदानंद रूपम नमो वीतरागम
चिदानंद
रूपम नमो वीतरागम नाद्यं न मध्यं न अन्तं न चान्य
न मध्यं न अन्तं न चान्य
न द्रव्यं न क्षेत्रं न कालो न भाव
न कालो न भाव
न शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनम्
शिष्यो गुरुर्नापि हीनं न दीनम्
चिदानन्द रूपं नमो वीतरागम्
रूपं नमो वीतरागम्
इदं ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी
ज्ञानरूपं स्वयं तत्त्ववेदी
न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपम्
न शून्यं न चैत्यं स्वरूपम्
न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकम्
न भिन्नं न परमार्थमेकम्
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्
चिदानन्दरूपं नमो वीतरागम्
आत्मा राम गुणाकरं गुणनिधिम्
गुणाकरं गुणनिधिम्
चैतन्यरतनाकरं
चैतन्यरतनाकरं
सर्वे भूतगतागते सुखदुखे
भूतगतागते सुखदुखे
ज्ञाते त्वयि सर्वगे त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा
त्रैलोक्याधिपते स्वयं स्वमनसा
ध्यायन्ति योगीश्वरा
ध्यायन्ति योगीश्वरा
वन्दे तं हरिवंशकर्षहृदयम्
हरिवंशकर्षहृदयम्
श्रीमान् हृदाव्युच्यताम् वीतराग भगवान की उनका क्वेश्चन ये है कि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के होने योग जो क्षायिक सम्यक दर्शन है क्या वो बिना आत्मानुभूति के हो सकता है। कुछ चीजें अपने मन में पहले आगम के अनुसार क्लियर करना चाहिए। पहली चीज, चौथा गुणस्थान किसे कहते हैं? अविरत सम्यक दृष्टि नाम का चौथा गुणस्थान, जिसने श्रावक के योग व्रत तो धारण नहीं किए हैं लेकिन जिसे सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है वो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है। ये प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की पद्धति से चौथा गुणस्थान हो गया। क्या समझ में आया? जिसने श्रावक या मुनि के योग कोई व्रत धारण नहीं किए हैं लेकिन जिसकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है, सात तत्वों पर श्रद्धा है, इतना और जोड़ लो, वो कौन है? चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। ये किस अनुयोग की किस पद्धति का है? तो ये प्रथमानुयोग और चरणानुयोग की पद्धति है। द्रव्यानुयोग की पद्धति में कहेंगे कि जिसने व्रत नियम संयम तो कुछ भी नहीं लिए लेकिन जिसे आपा पर का भेद विज्ञान हो गया है, जिसकी आत्मा के प्रति रुचि जागृत हो गई है, जिसे आत्मा में के प्रति श्रद्धान हो गया है, आत्म तत्व के प्रति श्रद्धान हो गया है, वो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है। ये द्रव्यानि योग की पद्धति है। और करणानि योग की पद्धति क्या है? जिसने मिथ्यात्व संबंधी तीन और अनंतानुबंधी आदि चार ऐसी सात प्रकृतियों का अत्यंत क्षय कर दिया है, या कि उन्हें उपशमित कर दिया है, या इन प्रकृतियों में से छह का तो उपशम और क्षय एक साथ हुआ है और एकमात्र सम्यक प्रकृति जिसके उदय में है वो क्षय उपशम सम्यक दृष्टि कहलाए। तीनों चौथे गुण स्थान वाले हैं। कर्णानि योग की पद्धति में गुण स्थान चौथा कब होता है? जब मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का उपशम हो या क्षय हो या कि क्षय उपशम हो, ठीक है, तब कर्णानि योग की पद्धति से कहा जाएगा कि चौथा गुण स्थान हो गया। बाकी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा हो गई, ठीक है। अब सवाल यह है कि अविरत सम्यक दृष्टि ऐसी संज्ञा तो दी जा सकती है चरणानुयोग, करना प्रथमानुयोग और द्रव्यानुयोग से, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान तो कर्णानुयोग के अनुसार ही बनेगा। अविरत सम्यक दृष्टि तो जिसके व्रत नहीं है लेकिन सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है, जिसके व्रत नियम नहीं है लेकिन आपा पर का भेद विज्ञान है, आत्मा में रुचि है, आत्म तत्व का श्रद्धान है, पर द्रव्य नते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ठीक। ये जो है चतुर्थ गुण स्थान के लिए नहीं, ये तो सिर्फ अविरत सम्यक दृष्टि की परिभाषा है, लेकिन चौथे गुण स्थान वाले की, तो चौथे गुण स्थान में तो वो ही होगा जिसने की सात प्रकृतियों का उपशम क्षय या क्षयोपशम किया होगा, तो चौथा गुण स्थान बनेगा। अब देखना मजा, अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी चीज। चौथे गुण स्थान में होने वाले क्षायक सम्यक दर्शन, और वो कह रहे हैं कि आत्मानुभूति, आत्मानुभूति ये शब्द द्रव्यानि योग का है, और चौथे गुण स्थान में क्षायक सम्यक दर्शन ये कर्णानि योग की पद्धति है। अपन लोग दोनों चीजों को एक साथ मिला देते हैं और झगड़ा खड़ा हो जाता फौरन। अपने को आचार्यों ने समझाने के लिए, समझने के लिए चार पद्धतियां इसलिए अलग अलग रखी हैं, और उन चारों को गड्ढमड्ढ कर दो तो चीज समझ में नहीं आती। द्रव्यानुयोग की पद्धति में अगर आप कहोगे कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है उसको आत्मा की अनुभूति हुई क्या, कहेंगे हाँ आत्मा के श्रद्धान को ही आत्मानुभूति कहेंगे, हो गया। द्रव्यानुयोग की कथनी में सही है वो, क्या चीज, आत्मा का श्रद्धान होना ही आत्मानुभूति है, ये द्रव्यानुयोग की पद्धति। कर्णानुयोग कहता है कि ऐसे कैसे, जब तक आपके तीन चौकड़ी बैठी हैं, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान शुद्ध आत्मा की अनुभूति का उपाय ही नहीं है, ये कर्णानि योग की पद्धति, तो झगड़ा मत करो। अगर द्रव्यानि योग की पद्धति से चौथे गुण स्थान में आत्मा के श्रद्धान को आत्मानुभूति माना गया है तो आराम से उसको मानो, लेकिन ऊंचे वाले गुणस्थान में होने वाली अनुभूति को नीचे वाले गुणस्थान में खींच के लाओगे तो आएगी नहीं, विकल्प और होगा, संक्लेश होगा, बात क्लियर नहीं होगी। ये अपने को ध्यान में रखना, तब इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल सकता है। इसलिए जो चौथे गुणस्थान में आत्मा का श्रद्धान है उसे ही द्रव्यानि योग की पद्धति में आत्मानुभूति कहते हैं, लेकिन शुद्ध आत्मानुभूति ही वास्तव में आत्मानुभूति कहलाती है। अब यहां ये नहीं कह रहे कि आत्मानुभूति, आत्मानुभूति तो जैसी आत्मा की स्थिति है वैसी होगी, आत्मा में श्रद्धान तो हो गया है कि मेरी आत्मा ऐसे स्वभाव वाली है, जानना देखना मेरा स्वभाव है, ऐसा आत्म तत्व पर श्रद्धान हो गया। अब उस आत्म तत्व के श्रद्धान से भीतर क्या भाव आता है, ये पंचेंद्री के विषय तो मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं है, इनमें मैं सुख और दुख मानता हूं, ये मेरा भ्रम है, ऐसा जो विचार चल रहा है वो निरंतर आत्मा की तरफ ले जाने वाला है कि नहीं। लेकिन अभी आत्मा में राग और द्वेष भरे पड़े हैं कि नहीं, तो आत्मा की अनुभूति कैसी होगी शुद्ध अवस्था की, कि जो राग द्वेष से युक्त आत्मा है उसकी, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कि शुद्ध तो तब होगी जब उसमें से अनंतानुबंधी रूप रूपी राग द्वेष चलो जावे, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान चला जावे, अकेला संजुलन। तो आज कुछ आचार्य कहते कि अकेला संजुलन रह जावे तो भी होगा, नहीं तो कुछ आचार्य तो कहते कि संजुलन कषाय भी चली जावे तब शुद्धात्मानुभूति होगी। ग्यारहवें गुण स्थान में जहां शुक्ल ध्यान है वहीं शुद्धात्मानुभूति है। फिर और ऊंची जगह ले जाके छोड़ते हैं कि जब जब कषाय समाप्त हो जाए, मोहनी कर्म दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी दोनों, अकेले दर्शन मोहनी के क्षय होने से आत्मानुभूति शुद्ध आत्मानुभूति का उल्लेख आचार्यों ने नहीं लिखा। मोह के अभाव में तो लिखा है लेकिन अकेले दर्शन मोह के बस इतना, ये टेक्निकल मामला है एक्चुअली, ये बड़ा बारीक मामला है। दर्शन मोहनी के अभाव होने पर आत्मानुभूति तो हो सकती लेकिन शुद्धात्मानुभूति नहीं हो। और आत्मानुभूति किस तरह की? श्रद्धान रूप। हां, जैसे किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी हो, पानी के लिए तड़प रहा है, कहीं पानी दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, और कोई सामने से आता दिखाई पड़ता पूछता है कि पानी है क्या? अरे तुम इतने व्यथित हो रहे, अभी देखो हम अभी पी करके आ रहे, तुम 50 कदम और चलो और अभी पानी मिल जाएगा। अब उससे पूछो कि अब कैसी अनुभूति हो रही? अब जरा शांति है, पहले बहुत आकुलता थी, अब तो मिल जाए 50, वो बिल्कुल हमारा मित्र ही है, वो कह रहा 50 कदम पर है, कैसा लग रहा? आप प्यास बुझ गई क्या? बोलो, बुझ गई क्या? पानी पी लिया? लेकिन कैसा लग रहा है? जैसे कि मिल गया। अब इसको आप क्या कहोगे? और एक व्यक्ति, अब वही व्यक्ति आगे जाके 50 कदम और सामने सरोवर देखता है अथाह जल से भरा हुआ, अरे वाह आनंद आ गया। अभी प्यास फिर भी नहीं बुझी, अभी तो सिर्फ मजा ले रहा है कि क्या बढ़िया आनंद। अब बस अब भी जो है हाथ वाथ धो करके, अब कोई आकुलता नहीं, अब हाथ वाथ धो करके बढ़िया से और पानी पीऊंगा। जब पानी पी लेगा तब प्यास बुझेगी, लेकिन प्यास कहां से बुझना शुरू हो गई? जहां से ये श्रद्धान हो गया कि अब मिल जाएगा 50 कदम, ऐसे ही आत्मा की रुचि जागृत हो जाती है कि मेरे आत्मा का स्वभाव ऐसा है, तो बड़ा शांति मिलना शुरू हो जाती। उस शांति को, उस आनंद को चाहे जो नाम दो भैया, लड़ो बनने क्या जो नाम देना सो दे लो। आचार्य भगवंतों ने जैसा दिया है वैसा दो तो और आनंद आएगा, और अपने मन का दोगे तो थोड़ा बाद में जाकर के गड़बड़ हो जाएगी। जब सिद्धांत आगे पढ़ोगे तो सिद्धांत से मेल नहीं खाएगा, अध्यात्म सिद्धांत से मेल खाना चाहिए। सिद्धांत की भाषा में जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं, अध्यात्म की भाषा में होते उसे शुद्धात्मानुभूति कहते हैं। ये दोनों टेक्निकल वर्ड है और दोनों सिनोनिम्स हैं, सिद्धांत की भाषा और अध्यात्म की भाषा के दोनों एकार्थवाची शब्द हैं, लेकिन हम इनको ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं तो हम कहीं से कहीं इनको लगा लेते हैं तो गड़बड़ में पड़ जाते हैं। भैया मैंने तो इतना ही समझ पाया है, इसके आगे भी आपने अगर समझाओ तो और देखिएगा उसको। परम आनंद, सुखानंद, समरसी भाव, निर्विकल्प ध्यान, आपस में कोई फर्क है या पर्यायवाची है? सब पर्यायवाची शब्द। परम आनंद की अवस्था कब आती है? कषाय से मुक्त होने पर। कषाय से अनुरंजित जब तक हमारी भाव दशा है, हां, तब तक हमें परम आनंद की अनुभूति नहीं हो सकी। तब तक हमें जो आनंद आएगा वो सुख और दुख रूप, जिसके पीछे दुख लगा हुआ है उसको परम आनंद नहीं कहते। परम आनंद वो है जिसमें से दुख निल हो गया। और दुख का कारण क्या है? मोहनी कर्म, वेदनी कर्म सुख दुख में कारण बनता है, ये बात जुदी है, लेकिन बिना मोहनी के वेदनी कर्म का कोई काम नहीं है। हां, मोहनी के सद्भाव में ही वेदनी अपना, देखो भैया समझने के लिए, अपन की जितनी शरीर में आसक्ति होगी उतना ही शरीर से सुख दुख मिलेगा कि नहीं? जा चीज हमारी है, जैसे ही ऐसा ममत हुआ वैसे ही इसके माध्यम से सुख दुख मिलने लगा कि नहीं? सीधी सीधी बात, मोहनी जब तक हमारा ममत्व भाव नहीं होगा किसी भी चीज में, तब तक सुख दुख की अनुभूति हमें वेदनी कर्म नहीं करा सकता। तो इसलिए मोह के अभाव होने पर ही परम आनंद कहो, परम सुख कहो, या समरसी भाव। समरस मतलब सुख और दुख दोनों में समता भाव कब आएगा? और जब सुख दुख रूपी राग द्वेष रूपी विकल्प मिट जाएंगे तभी तो निर्विकल्प समाधि कहलाएगी, निर्विकल्प ध्यान कहलाएगा। शुक्ल ध्यान को ही निर्विकल्प ध्यान माना है और शुक्ल ध्यान मोहनी कर्म के अभाव में ही होता है। इसलिए परम आनंद या कि समरसी भाव या कि सुखानुभूति या कि आत्मानुभूति या निर्विकल्प समाधि, सब जो है ये एकार्थवाची हैं और एक ही जगह जाकर मोह के अभाव होने पर ग्यारहवें गुण स्थान और बारहवें गुण स्थान में, और तेरहवें तो उसका फल है, निर्विकल्प समाधि का फल मिल जाता है उसमें। तो इस तरह से इसको अपन घटित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या वर्तमान में गलत काम करने वाले पुरुष के प्रति सज्जन पुरुष द्वारा भलाई का कार्य करने का भाव उसके पूर्व कर्म यानी बुरे कर्म करने वाले के कारण होता है या सज्जन पुरुष की सज्जनता के कारण? अपने यहां तो आचार्यों ने यही लिखा है कि जो कुछ भी होता है वो सब कर्मों से ही होता है, ऐसा नहीं मान लेना। और अगर ऐसा मानना चाहो तो कर्मों को पहले समझ लेना। तीन तरह के कर्म होते हैं, एक वे जो हमारे साथ बंधे हैं और बंधते चले जाते हैं, एक वे जो कि हम रोज करते हैं, और एक वे जो जिनका हम फल भोगते हैं। तीन तरह के कर्म हैं, किए जाने वाले, बंधने वाले, हमारे द्वारा भोगे जाने वाले, सबके सामान्य समझ में आने वाली चीज है ये। अब देखो हम करते हैं अच्छे कर्म वर्तमान में, लेकिन हमारे साथ बंधे हुए हैं बुरे कर्म, वे उस अच्छे कर्म को प्रभावित करेंगे कि नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। और इतना ही नहीं, हमें उन बुरे और अच्छे दोनों प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जो हमने वर्तमान में किया है उसका फल भी तुरंत भोगना पड़ेगा और बाद में भोगना पड़ेगा, और जो पहले से बंधे हैं उसका भी फल वर्तमान में भोगना पड़ेगा। सपोज करो एक व्यक्ति को प्यास लगी, अपने पास पानी था, अपन ने उसको पिला दिया, क्या हुआ? पानी पिलाने का परिणाम क्या हुआ? तुरंत के तुरंत अपन को संतोष मिला, उसको शांति मिली। मिली कि नहीं? सीधी समझ में आने वाली चीज। अब मेरे अंदर यह पानी पिलाने का भाव क्यों आया? मेरे किसी पुराने संचित कर्म के फल स्वरूप आया। मैंने कोई बढ़िया कर्म पहले बांधा होगा, उसका फ्रूटेशन हुआ, मेरे अंदर विचार आया कि इसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए वर्तमान में मैंने उसकी मदद करने का काम किया। ठीक, उसका पुण्य पाप देखना है। अब अपना तो ये अपन ने देख लिया, अब सामने वाले का पुण्य पाप। मुझे मेरे अपने सत्कर्मों की वजह से दूसरे की भलाई करने का भाव होता है या दूसरे के पुण्य की वजह से वो मेरे द्वारा भलाई करवा लेता है? अब देखो ये बारीक सी चीज है। तो दोनों चीजें, कई बार हमारे अंदर भले करने का भाव नहीं होता लेकिन सामने वाले का इतना पुण्य होता है कि वो हमारे द्वारा हमें निमित्त बना करके अपना भला कर लेता, और कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के पाप का उदय है और फिर भी हम अपनी तरफ से उसकी भलाई करते हैं, तब भी संभव हो जाती है भलाई सामने वाले के। दोनों ही चीजें संभव हैं। ये एकदम समझ में नहीं आएगा, मैं किसी की भलाई करूं, मेरे भलाई करने के भाव हैं, और सामने वाले के पाप का उदय है, तब भी उस पर थोड़ा बहुत तो मेरी भलाई का प्रभाव पड़ेगा, देर से भले ही पड़े, तुरंत नहीं पड़ेगा क्योंकि कषाय बहुत तीव्र है अभी, बाद को लेकिन उसका असर कि देखो इन्होंने हमसे कितनी बढ़िया बात करी थी, उस समय तो हमने गुस्से में आकर के और पता नहीं कितनी बातें सुनाई थी कि जाओ अपने, हमें नहीं कर, आपकी सेवा की आवश्यकता है, फलाना दुनिया। फिर बाद में जब जरा मामला ठंडा होता तो सोचते हैं कि उसने कहा तो ठीक था, मेरे भले के लिए कहा। ये इफेक्ट अपन रोज देखते हैं इस चीज को। तो दोनों ही चीजें हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया हुआ है, वो जो पानी का हमने दिया उसको और आगे बढ़ाएं कि हमें तुरंत संतोष मिला, उसको शांति मिली। अब देखना, अब उसका भाग और मेरा पुरुषार्थ, दोनों की ट्यूनिंग। वो अगर भला आदमी है तो 15 दिन बाद मिलेगा तब भी जय जिनेन्द्र कहेगा अपन भूल गए, उसको याद है कि मेरे को जब प्यास लगी थी तब इनने पानी पिलाया था। और 15 दिन बाद भी आपका वो किया हुआ काम आपको फल दे रहा है, जय जिनेन्द्र। अरे कौन साहब, हम तो पहचाने नहीं। अरे आप भूल गए, आपने मुझे उस समय बहुत प्यास लगी थी, पानी पिलाया था। आपके पानी पिलाने का कर्म आपको पॉजिटिव फल दे रहा है, क्योंकि वो सामने वाला भला आदमी। और अगर वो बुरा हो तो 15 दिन बाद क्या, उसी समय हो सकता है कि पानी पिलाते ही लौटने लगे, 4 लोगों को जोड़ देवे कि 20 दे दिया इनने। अच्छा व्यवहार उससे हमें रिटर्न में आता है, बुरा व्यवहार तो समझना हमारी पाप का उदय नहीं है, उसकी कषाय है, उसका द्वेष भी उसमें शामिल है। मेरी अपने पाप का उदय नहीं है कि मुझे रिटर्न खराब आ रहा है, उसका भी कषाय, वर्तमान की कषाय भी तो है। ठीक है, मेरे पूर्व का कोई ना कोई संचित कर्म होगा, संभव है, लेकिन उसकी सामने वाले की कषाय भी तो है। इसके लिए भी एक उदाहरण दिया है, हवाएं बहती हैं बगीचे में से बहें तो क्या लेके आती अपने साथ, खुशबू। और कचरा घर के ऊपर से बहें तो क्या लेके आती, बताओ। हम अगर प्रेम किसी को दें, रिटर्न अगर आती है फिर से प्रेम, तो समझना कि कहां से गुजरे हैं, सामने वाले के भीतर भी भले भाव हैं। और अगर हमने तो उसको दिया स्नेह और वहां से रिटर्न होकर के आया द्वेष, तो समझना कि कहां से गुजरी मेरी प्रेम की हवाएं, कहां से गुजरी, कचरा घर के ऊपर से गुजरी हवाएंगी। युधिष्ठिर को समझाते हैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते, जब युधिष्ठिर कहते हैं कि हमने क्या बिगाड़ा दुर्योधन का, हमने जब जब भी किया अच्छा ही किया लेकिन उन्होंने हमारे साथ बुरा ही किया, तब वो जवाब देते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हारी गलती नहीं है। अब किसी की कषाय ही हो तो क्या करें, अपने पूर्व कर्म को मान करके शांत रह जाना इतना ही उपाय है कि शायद मेरे ही किसी कर्म का उदय है, इसकी कोई गलती नहीं है। और लेकिन ध्यान रखना साथ में दूसरा उदाहरण, गेंद फेंकी है, अगर सामने कठोर दीवार है तो रिटर्न होके हम पे वापस आएगी ज्यों की त्यों, और अगर सामने रेत है तो धस के रह जाएगी, और अगर सामने कीचड़ भरा है फिर फेंका होगा तो छींटे लाएगी कीचड़ के। गेंद देखी है, अब देखना यह है कि फेंकी कहां है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब आगे वाले के साथ कैसा व्यवहार करना, अगर वहां से रिटर्न गड़बड़ आता है तो बस वहीं रुक जाना। तो अब प्रश्न पर आ जाएं कि इनका प्रश्न यह है कि सज्जन व्यक्ति दूसरे की भलाई करता है तो ये उसकी सज्जनता का काम है या कि सामने वाले के पुण्य का उदय है जिसकी वजह से सज्जन व्यक्ति उसके प्रति सज्जनता का व्यवहार करता है। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना कि सज्जन व्यक्ति की सज्जनता है कि वो सामने वाले दुर्जन के प्रति भी अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि सज्जन की परिभाषा ही ये है। जो दुर्जन के प्रति भी, देखो सज्जन के प्रति सज्जनता का व्यवहार तो दुनिया करती है, लेकिन दुर्जन के प्रति जो सज्जनता का भाव रखे ये उसकी सज्जनता का पावर है। बंदे दिखो पारनामिक ऊंचा, यहां उसके अनुसार कार्य हो रहा है, क्योंकि उसकी सज्जनता बहुत स्ट्रांग है, जिस स्ट्रांगनेस की वजह से वो दुर्जन के प्रति भी बुरा भाव नहीं रख रहा है, वो अपनी सज्जनता से पेश आ रहा है। तो उस समय ये नहीं समझना कि ये दुर्जन व्यक्ति के पुण्य का उदय है कि जो सज्जन का स्नेह पा रहा है। हां ये सज्जन व्यक्ति की सज्जनता है, जैसे कि भगवान। अच्छा भगवान का सबके प्रति समान भाव है कि नहीं, बताओ। किसी के प्रति भी द्वेष और किसी के प्रति भी, दुर्जन के प्रति द्वेष है क्या, उसके प्रति भी वैसे ही भाव है जैसा सज्जन के प्रति। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इसका मतलब है कि दुर्जन लोगों का पुण्य का उदय है कि देखो भगवान का भी उसके प्रति अच्छा ही भाव है। नहीं भैया, ये भगवान की भगवत्ता है कि वे दुर्जन के प्रति भी भला ही भाव रखते हैं अपने भीतर। ऐसा घटित करना पड़ेगा तो शायद ज्यादा आसानी रहेगी। कर्म सिद्धांत प्रैक्टिकली मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म है। इसके बावजूद भी अपनी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। अपन ने तो ये मोटा, फिर भी ये मोटा मोटा हिसाब लगाया अपने कि क्या संभावनाएं हैं, पर अपन नहीं कह सकते इसके बावजूद भी कि किसके कैसे कर्म के उदय में क्या चीज घटित हुई है और वर्तमान का पुरुषार्थ कितना है और पूर्व के संचित कर्मों का फल कितना है, दोनों का क्या रेशियो है, तब ये कार्य हुआ है। इतना अवश्य है कि अंतरंग और बहिरंग दोनों कारण मिलकर के ही कार्य होता है, जब भी होता है। संस्कार, क्या पुराने संस्कार व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं? अपन सबको भ्रमित तो किए ही हुए हैं। आत्म तत्व में रुचि नहीं है, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। संसार में ही सुख मालूम पड़ता है, इससे बड़ा भ्रम क्या हो सकता है? और ये कौन करवा रहा है? हमारे अपने मिथ्यात्व कर्म का उदय, दृष्टि को भ्रमित करने वाला मिथ्यात्म कर्म और हमारे आचरण को विकृत करने वाला चारित्र मोहनी कर्म। एक दर्शन मोहनी है, एक चारित्र मोहनी, उसका ही रोल है पूरी लाइफ में अगर देखा जाए। हमारी दृष्टि को निर्मल ही नहीं होने देता, हमारे अंदर जो वास्तविकता है उसको उजागर ही नहीं होने देता, हमें भ्रम में बनाए रखता हमेशा, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। ये दर्शन मोहनी कर्म, हमारे पूर्व का संस्कार, प्रबल संस्कार, और दूसरा हमारे आचरण को निर्मल नहीं होने देता, हमें बार बार झूठ बोलने के लिए प्रेरित करता है, हमें बार बार चोरी करने के लिए, उसी में आनंद मानने के लिए हमें हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या है? जो पापकारियों की तरफ प्रेरित करने वाला है, हमारे आचरण को गड़बड़ाने वाला है, वो सब कौन सा है? काषायिक भाव है, और कषाय सब चारित्र मोहनी का काम है, उनकी ही प्रकृति। इसलिए ये संस्कार है अपने अंदर, मोह के संस्कार। बात को समझ में आता, कहते वक्त नहीं समझ में आता। उसमें उदाहरण दिया है कि सुई जिसको चुभती है उसको मालूम पड़ता है, सुई को नहीं मालूम पड़ता कि कितनी तकलीफ है। हाँ, सुई को कैसे मालूम पड़ेगा? जिसको चुभी उसको मालूम पड़ेगा। हमारे वचन किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये हमको नहीं मालूम पड़ता। वो तो जब उसको तकलीफ पहुंच जाती तब मालूम पड़ता कि अरे हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे वचन से आपको तकलीफ पहुंच जाएगी। तब फिर अपन बहुत दुखी होके कहते कि इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद भी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, कोई इरादा नहीं था मेरा कि मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं, फिर भी आपको तकलीफ पहुंच गई। एक्सक्यूज, फौरन क्षमा मांग लेंगे अपन। अगर अपन ने जान बूझ के किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई होगी तो जितनी तकलीफ उससे पहुंची है उससे ज्यादा अपन को तकलीफ होगी, ये क्राइटेरिया है। और अगर आपने जान बूझ के की होगी, तकलीफ पहुंचाने के भाव से की होगी, तो आप सिर्फ बाहर बाहर कहेंगे आई एम सॉरी, हम सारो फील करते हैं, हमारा ऐसा नहीं था। वो समझ में आ जाएगा, सामने वाले के भी समझ में आ जाता है कि आपका क्या इंटेंशन था। तो ये दोनों चीजें हैं, इनको अपन समझें। व्यक्ति चाह कर भी अच्छा नहीं कर पाता, इसके लिए एक और कर्म है, वो है अंतराय कर्म। जैसे कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, अंतराय कर्म का भी रोल इसमें है। कैसे? दान देने की इच्छा होते हुए भी, दान का अवसर होने पर भी दान नहीं देना, दे पाना दानांतराय। किसी चीज के लाभ की इच्छा होते हुए भी पूरा सब लाभ के लिए सरंजाम कर लिया, लेकिन फिर भी लाभ नहीं हुआ। मैं धर्म ध्यान करूं, मैं ये कार्य करूं, ऐसा अत्यंत प्रबल विचार होने के बाद भी जो उस कार्य को नहीं होने दे, वो वीर्यांतराय कर। तो अच्छा कार्य करने के लिए भाव होते हुए भी अच्छा कार्य ना कर पाना, इसमें वीर्यांतराय कर्म भी है। इससे ये निश्चित हो गया कि कुछ तो हमारे वर्तमान की भी पुरुषार्थहीनता और कुछ हमारे पूर्व के संस्कार, दोनों मान के चलना पड़ेगा। अकेले पूर्व के संस्कार नहीं है, हमारे वर्तमान का अगर पुरुषार्थ हम बढ़ावें तो पूर्व में संचित कर्म भी हमारे ऊपर उतना ज्यादा फल नहीं देते हैं, असर नहीं डाल पाते, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार ही कर्म का फल मिलता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही फल प्राप्ति उदय, कर्मों के उदय को द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार ही फ्रूटेशन होता है। इसलिए उन संस्कारों को, उन परिणामों को कैसे दूर किया जाए, इसका उपाय यही है कि हम निरंतर पुरुषार्थ करें, अपनी अज्ञानता को जानें और पूर्व के कर्मों को दो ही कारणों से नष्ट कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाकर, अज्ञान को हटाकर, और पुरुषार्थ अर्थात कोई संकल्प ले लें, समर्पण समर्पित हो जाएं, किसी भी कार्य को करने के प्रति संकल्पित हो जाएं या समर्पित हो जाएं, तो वो हमारे लिए फिर अंदर के संस्कारों को तोड़ने में, जैसे कि मुझे गुस्सा आएगा लेकिन मैं चुप रहूंगा, ऐसा संकल्प कर लिया, अब गुस्सा तो आएगा, कर्म का उदय तो आएगा, पुराना संस्कार है, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं चुप रहूंगा। मन तो बहुत करेगा कि मैं चार बातें कह दूं लेकिन नहीं कहूंगा, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा पुरुषार्थ है, जो मेरा पुरुषार्थ उस कर्म को आसानी से, वो तो उदय में तो आएगा, वो अपना फल तो देगा, लेकिन मैं उसके फल से प्रभावित नहीं होऊंगा, इतना पुरुषार्थ तो अपन कर ही सकते। ज्यादा इंटेंसिटी वाला आएगा तो हम उतने ज्यादा इंटेंसिटी से प्रभावित नहीं होंगे, थोड़े बहुत, थोड़ी सी झुंझलाहट पर आई, आया तो क्रोध बहुत था लेकिन हमने बहुत पेशेंस, बहुत धैर्य रख करके उसको डायल्यूट कर दिया, उसको माइल्ड कर दिया। इस तरह भी हम कर सकते। ये सब मैकेनिज्म जो है कर्म में, उसके फ्रूटेशन के समय जब कर्म अपना फल देता है, तब हम अगर सावधानी बरतें तो बहुत सारा काम हम कर सकते हैं, या कि जब कर्म बंधते हैं तब भी कर सकते हैं, और बंध जाने के बाद भी हम उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। जो 10 करण हैं वो अपन कभी समझेंगे जब समय आएगा, तो फिर डिटेल में तो आप लगेगा कि हाँ, किसी द्रव्य वेद के उदय में भाव वेद भिन्न प्रकार का भी हो सकता है क्या? देवों में और नारकियों में ऐसा कथन आता है कि जो द्रव्य वेद है वही उनके भाव वेद होता है, लेकिन मनुष्यों में ऐसी बात नहीं है। द्रव्य से कोई पुरुष हो सकता है, भावों की अपेक्षा स्त्री वेद का भी वेदन कर सकता है और नपुंसक वेद का भी वेदन कर सकता है, और दोनों के द्वारा श्रेणी तक चढ़ सकता है, अर्थात अपने कल्याण के रास्ते पर भी जा सकता है। भीतर में भाव से दूसरा वेद रहा आ सकता है और बाहर में शरीर से दूसरा। द्रव्य वेद और भाव वेद समझते, हमारी फीलिंग्स और हमारा एनाटॉमी। द्रव्य वेद वो है जो हमें बाहर से पुरुष स्त्री या दोनों का कंबाइन शरीर देता है, और भाव वेद क्या है? जो हमारे अंदर पुरुषत्व या जो हमारे अंदर मातृत्व या हमारे अंदर दोनों के प्रति और आकांक्षा का भाव, पुरुष के प्रति आकांक्षा का भाव या स्त्री के प्रति आकांक्षा का भाव, दोनों के प्रति आकांक्षा का भाव, ये आकांक्षा का भाव हमारे अंतरंग के भाव वेद का प्रतीक है, और हमारा जो शरीर है वो हमारे द्रव्य वेद का। तो द्रव्य वेद कोई भी रहा है, भाव वेद दूसरा भी हो सकता है। इस तरह से मैंने ये बात जो कही, मुझे लग रहा है कि मैंने शायद ये लेशा वाली बात घटित कर दी है, क्योंकि देवों में जैसी लेशा बाहर होती वैसी ही अंतरंग में होती, ये वेद के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कह तो दिया आपसे कि देवों और नारकियों में तो जैसा बाहर में वेद होता है, नारकी के तो नपुंसक वेद है, इसमें तो कोई वो है ही नहीं, देवों में तो नपुंसक वेद होता ही नहीं, उनके सिर्फ स्त्री और पुरुष वेद होता है। अब ये थोड़ा सा और कंफर्म करना पड़ेगा कि देव के मात्र पुरुष वेद ही होगा और स्त्री के मात्र स्त्री वेद ही होगा, देवों में शायद ऐसा मुझे एकदम कंफर्म नहीं आ रहा है, मैं कल कंफर्म करके बताऊं, पर मनुष्यों में तो द्रव वेद दूसरा भी हो सकता है, भाव वेद कुछ दूसरा ही हो सकता है, दोनों चीजें। महाराज कुछ सुनाएंगे क्या? मैं इस तरह के प्रश्न अब पढ़ करके नहीं सुनाता। क्यों नहीं सुनाता? क्योंकि मैं जब महाराज से कहता हूं कि आप भजन सुनाएं, तो महाराज कई बार नहीं सुनाते, तो इस वजह से फिर मैंने एक दिन कहा था कि मैं अब नहीं कहा करूंगा, कहा था, तब से फिर मैंने नहीं कहा। फिर हमारे पास कोई प्रश्न भी आता है तो भी हम एक तरफ उसको रख देते हैं, क्योंकि नहीं है भावना तो बाई फोर्स किसी से कोई चीज नहीं करवानी चाहिए, है कि नहीं? उनकी भावना होगी तो वो हमसे अपने आप कह देते हैं कि महाराज आज हम 5 मिनट लेंगे बाद में, तो जब कह देते हैं कि 5 मिनट लेंगे तो फिर मैं अपने आप छोड़ देता हूं, और जब नहीं कहते हैं तो हम लोगों को ऐसा कॉम्प्रोमाइज करके रखा है हमने कि जब आपकी भावना हो तो हमसे बता देना। अब हम आपसे फोर्सफुली नहीं कहेंगे कि हमने कहा एकदम और नहीं आया भजन। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि टेप रिकॉर्ड हो कि हमने बटन दबाया और चालू हो गया, ऐसा थोड़ी है। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आपने कहा और शुरू। कविता फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है कि आपकी फरमाइश पर हम कुछ भी सुना देंगे। तो सबसे बढ़िया यही है कि जब भावना हो तब फिर है, उनकी भावना होगी तो वो अपने आप ही बोल देते हैं कि मैं आज सुनाऊंगा, और अपना समय अभी पूरा होने में 1-2 मिनट बाकी हैं। 1-2 मिनट में उनकी भावना होगी तो जैसे उन्होंने कहा नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब कल उनकी भावना बन जाएगी तो कल कर। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं।
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं।
बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं।
इस जीवन में औरों का उपकार करूं,
औरों का उपकार करूं,
औरों का उपकार करूं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।